ओम शांति। ज्ञान योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए सबसे कठिन काम कौन सा है? बाबा ये प्रश्न नहीं पूछता कठिन कौन सा है, मैं पूछ रहा हूँ। बाबा तो कहता है साहब सहज है तुम्हारे लिए, ऐसा हमारा टीचर है ना बहुत अच्छा, साहब सहज। लेकिन एक काम सचमुच कठिन है, कौन सा? और बताओ, बहुत प्रैक्टिकल, इधर ही आ जाओ सुशील। चार्ट लिखना और बोलो, संस्कार परिवर्तन और शरीर ही बनना। इससे पहले सबसे किम को नहीं मिला कोई ट्रांसलेटर? किम, नो वन? समवन विल कम फॉर यू, यस। संसार में भी लोग ये बात मानते हैं कि हवा को रोकना संभव हो भी जाए परंतु मन को रोकना बहुत संभव है, असंभव है। बाबा ने इसे सरल किया है और इसकी बहुत अच्छी अच्छी विधियां बताई हैं। दुनिया में तो कहावत है मन जीते जगत जीत, बाबा ने भी कभी ये कहा, लेकिन काम जीते जगत जीत ये भी कहा। जो स्वयं पर राज करते हैं वो विश्व पर राज करेंगे ये भी कहा। आज अरे माताओं को इधर भेज दो, इधर बैठा लो, यहाँ जाओ, जिसको बैठना हो, भाई कम है, आ जाओ। तो हम सभी अपने मन के राजा बन जाएं, आज हम इस पे ही चर्चा करेंगे, मन के मालिक। मैंने प्रश्न इसलिए पूछा था कि ये काम सचमुच कठिन तो है ही, सहज होता तो सभी बन जाते ना। इसी से जुड़ा हुआ है शरीरीपन, बाबा की याद, आत्मिक दृष्टि। क्योंकि जब मनुष्य के मन में व्यर्थ संकल्पों का फोर्स ज्यादा है तो ये सब चीजें प्रैक्टिस में होती नहीं। हालांकि सबसे सहज प्रैक्टिस है मैं आत्मा हूँ, कुछ भी इसमें भारीपन नहीं है, बिल्कुल इजी, लेकिन ये होती नहीं। और अगर इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लें तो मन स्वतः ही कंट्रोल में आ जाए, स्वतः ही कंट्रोल में आ जाएगा। पिछली बार भी मैंने एक अच्छी बात यहाँ अनुभव की, किसी के सुनाई थी, फिर बाबा आने वाले हैं, आपको भी सुना देता हूँ। उसके बाद हमने कुछ विदेशियों से वो प्रैक्टिस कराई और सच तो ये कि मैंने सोचा मैं भी एक दिन करके तो देखूं। एक ऐसी आत्मा मेरे पास आई जो लंबा समय से ज्ञान में है लेकिन जिसका चित्त शांत नहीं होता, वो सदा ही परेशानियों में जीवन बिताती है। पति ने तंग किया है, बच्चों ने भी सुख नहीं दिया है, सदा ही उसका जीवन परेशानियों में रहा। मेरे पास 10-15 साल से आती है, मैं उसे अच्छी अच्छी विधि सिखाता हूँ लेकिन उससे होता नहीं है। पिछली बार बाबा के एक दिन पहले फिर आई, मैं हंसने लगा, मैंने कहा मैं तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, तुमसे होता नहीं भाई, अभी जैसा है उसे ही स्वीकार कर लो, अब मान लो कि मेरे से कुछ होगा नहीं। हंसने लगी कि क्या करूं, होता नहीं। फिर मैंने उसको हिम्मत दिलाई कि नहीं, तुम संकल्प करो कि मुझे करना है। हालांकि मैंने ही कहा था तुमसे होता नहीं तो छोड़ दो, तो मैं उसका रिएक्शन देखने के लिए कहा था कि वो क्या कहती है। तो मैंने उसे कहा ठीक है, एक बिल्कुल सरल बात तुम्हें कहता हूँ, कल बाबा मिलने आ रहे हैं, कल प्रैक्टिस करके परसों मुझे सवेरे बताना आके। प्रैक्टिस सिंपल कि आपको 1000 बार याद करना, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और कुछ नहीं करना। कहा पर मुझे तो कोई अनुभव नहीं होते। मैंने कहा अनुभव को यहीं छोड़ जाओ, तुम्हें केवल मंत्र जाप करना है। अनुभव ये भूल जाओ कि तुम्हें कुछ अनुभव होगा, तुम्हें केवल मंत्र जाप करना 1000 बार। उसको मैंने मनाया, वो तैयार नहीं थी। उसको था कि मिठाई खाई तो मुख तो मीठा होना चाहिए ना, पर नहीं मुख मीठा हो रहा, कैसी मिठाई है ये, लगता है ना आश्चर्य। मैंने उसको तैयार किया, तुम करना प्रैक्टिस। तीसरे दिन वो आई, उसका चेहरे से साफ हो गया कि कुछ हो गया है बच्चा। मैंने उससे पूछा कैसा रहा, कहा जीवन में पहली बार कल प्रभु मिलन का आनंद आया है। देखो उसने बाबा के वो मिलन देखे हैं जिसमें बाबा बहुत अच्छी लंबी मुरली चलाता था, जिसमें बाबा हरेक को बहुत गुड फीलिंग देता था। अब की भेंट में उसने वो भी दिन देखे, 25 साल से वो आ रही है, और अब का मिलन तो बहुत हल्का रहता है, लेकिन उसको पहली बार मिलन का सुख मिला। फिर कुछ विदेशी आए जिनकी कुछ समस्याएं थी, बीमारियां थी, ठीक नहीं हो रही थी, मैंने उनसे शुरू कराया, होने लगा। इसी बीच में मैंने एक दिन किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास लगातार कर देता हूं। मैं खाली था यही अनसरोवर में, कहीं जा नहीं रहा था, तो बहुत सुखद फीलिंग शाम तक हो गई, एकाग्रता बढ़ गई। जिनकी एकाग्रता बिल्कुल नहीं होती, जिनको ये सब्जेक्ट अति कठिन लगता है, वो ये अभ्यास करें, मैं एक महान आत्मा हूं, ले लें इसको, याद करें सारा दिन। मैंने इसमें दूसरा भी जोड़ दिया था अपने लिए कि जब मैं ये सोचूंगा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो मैं आत्मा देखकर अभ्यास करूंगा कि मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। तो बहुत आनंदकारी अनुभव हो गए। ये एक बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि जो संकल्प हम बार बार करते हैं आत्मा से, वैसे ही वाइब्रेशंस ब्रेन को जाते हैं, पहले ब्रेन को, और ब्रेन सब कुछ है ना हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए, तो बहुत सुखद फीलिंग हो जाती है। कोई एक बहन ऐसे आई विदेश से जो सिख रिलीजन से है, और ज्ञान में आने से पहले वो उस देश में जितने भी सिख लेडीज हैं उनकी अध्यक्ष थी, अभी भी है। उसने मैं से पूछा था मैं क्या करूं, वो सब छोड़ दूं क्या, छोड़ना तो नहीं चाहिए ना, सेवा का सुंदर फील्ड है। तो क्या बताया उसने, मैं कह रहा था, मैं महिमा कर रहा था कि देखो सिख लोग सवेरे उठ के पाठ करते हैं गुरु ग्रंथ साहब का, कुछ तो अच्छा है, कम से कम मन शांत तो होगा। तो उसने क्या कहा अपना अनुभव, कि मैं तो रोज पाठ करती थी तो सब याद हो गया था, अब मुख से पाठ कर रही हूं और मन कहीं और घूम रहा है। तो देखो ये भी हो जाता है, अगर जो चीज हम बोल रहे हैं उसकी हमें गुड फीलिंग नहीं है तो उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है ना। बाबा ने इन सबसे ऊपर हमें ले आया है कि आप ऐश्वर्यपन का अभ्यास करो, तो 5 स्वरूपों का अभ्यास हमारे मन को एकाग्र करने वाला है। न केवल एकाग्रता होगी लेकिन बहुत बहुत फायदे होंगे इनसे, हमारी साधनाएं बहुत सफल होंगी। आज हमें इसकी चर्चा करनी है, और बाबा के आने तक सभी भाई बहने इसका बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। हमारे जीवन में हमारे लिए कई लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है अपने पूर्व जन्मों के विकर्मों को नष्ट करना। दूसरा लक्ष्य है अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को बाहर निकालना। बाहर निकालना माना निकाल के फेंक नहीं देना, जीवन में आ जाएं वो चीजें। तीसरा है संपूर्ण प्योरिटी हमारे जीवन में आ जाए। चौथा लक्ष्य है हम यहीं इस जीवन में, इन साधनाओं में, इस ब्राह्मण जीवन में डबल लाइट हो जाए, सदा ईश्वरीय नशे में आ जाए, संसार के इफेक्ट से हम मुक्त रहें संसार में रहते हुए, ये हमारे लक्ष्य हैं। तो पांच स्वरूपों का अभ्यास हमारी बहुत सहज साधना है। मैं दूसरी भी चीज जोड़ूंगा जिससे मन को रोकने में और मन को नई दिशा देने में सबको बहुत मदद मिलेगी। आज तारीख हो गई 30, 4 दिन है। करेंगे सभी 4 दिन अच्छी साधना? करेंगे पीछे वाली बहने? करेंगे सब जो सेवा में भी आए हैं, पार्टियों में भी आए हैं, मन से अपने को तैयार कर दो। 4 दिन बस श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए है, सेवाएं तो थोड़ी होती हैं। 4 दिन की हमारी साधना बाबा के मिलन का बहुत सुंदर अनुभव कराएगी। बाबा तो ऐसा है, देखो जैसे ज्ञान सूर्य दादी के तन में आकर बैठ गया, वो कुछ बोले या ना बोले उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं। कोई उसमें से कुछ कैच करता है, कोई कुछ, किसी को लगता है बाबा बहुत प्यार कर रहा था। बाबा को शायद पता ही ना हो कि मैं बहुत प्यार कर रहा हूं, नहीं उसे पता होता है, पर सामने वालों को बाबा के शब्दों से बहुत प्यार की फीलिंग होती है। किसी को लगता है बाबा के पास बैठने से बहुत शक्तियां मिल गई, किसी को शांति मिल गई, किसी के विघन ठीक हो गए। ये अब तक के बहुत अनुभव रहे लोगों के। कई बार ओम शांति भवन में सिर दर्द हो रहा किसी को बहुत ज्यादा, आगे आगे बैठे हैं, बाबा की नजर पड़ी, गायब। कमर दर्द चलता आ रहा 10 साल से, यहां बैठे हैं सामने, बाबा की दृष्टि पड़ी, गायब। ये सब अनुभव बाबा नहीं कर रहा था कि मेरी दृष्टि से इसका कमर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उस आत्मा का भाग्य था। उस समय सुंदर समय था कि बाबा के वाइब्रेशंस मिले और वो उस बीमारी से मुक्त हो गए। तो अब बाबा के सुंदर अनुभव हमें करने हैं और वो अनुभव हमारे केवल उस समय के न रह जाएं, वो हमारा जीवन बन जाए। इसके लिए 4 दिन सभी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सच्चे मन से इस साधना के लिए समर्पित कर दें 4 दिन, कि मेरा संपूर्ण समय अब इस साधना के लिए है। 2 साधनाएं हम रख रहे हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, भ्रकुटी मेरा सिंहासन है, और जो राजा है वो बहुत शक्तिशाली होता है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और स्वराज्य अधिकारी हूँ। 2 सुवमान चलेंगे साथ साथ। सभी इस बात को अच्छी तरह रियलाइज करें जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान देंगे। मैं आत्मा मालिक हूँ, किस किस की? मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रियां और ये तन, 5 चीजों की मैं आत्मा मालिक हूं। अपने को ये अवेयरनेस देंगे, ये स्मृति दिलाएंगे, मन मालिक नहीं, मालिक मैं हूं। रोज जैसे अपने मन बुद्धि को बताएंगे, हे मन बुद्धि तुम्हारा मालिक मैं हूं, और इस फीलिंग को बढ़ाएंगे, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूं, ये मस्तक मेरा सिंहासन है, मैं राजा हूं, इस देह का राजा, कर्मेंद्रियों का, मन बुद्धि संस्कारों की राजा हूं। ये प्रैक्टिस बढ़ानी है, ये फीलिंग बढ़ानी है, मैं मालिक हूं, राजा हूं। बहुत जल्दी अनुभव होगा कि हम मन बुद्धि के मालिक बन गए, और हम अपनी मन बुद्धि को जो आदेश देंगे मन बुद्धि वही करेंगे। देखो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जो अंतर मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे आदेश का पूरी तरह पालन करता है। हमें केवल उसे आदेश देना है बस। तो वो भी मन है ना, अंतर मन, वो भी मन है। तो हमारा मन पूरी तरह हमारे आदेश का पालन करेगा। आप मन को कहेंगे, हे मेरे मन शांत, अब भटकना नहीं है। सवेरे उठे अपने मन को आदेश दे दें, कमांड दे दें, हे मेरे मन अब 8 बजे तक तुम्हें भटकना नहीं है, एकाग्र हो जाओ, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो। वैसा ही होने लगेगा। अपनी बुद्धि को आदेश दे दें, हे मेरी बुद्धि तुम मेरी बहुत सुंदर ग्रहण शक्ति हो, धारणा शक्ति हो। अब जो बाबा की अच्छी बातें मैं सुनूं तो उन सब को धारण कर ले, धारणा शक्ति बढ़ जाएगी। ये प्रैक्टिस एक बार सवेरे रोज बहुत जरूरी है करनी। एक बार तो ज्यादा नहीं है ना, शाम को भी योग में बैठे हैं तो शाम को भी कर ले, पर एक बार मोस्ट इम्पोर्टेंट, ताकि जागृति आ जाए हम में, हम ये महसूस करने लगे हम मालिक हैं, राजा हैं। हम में से कई आत्माएं जन्म जन्म राजा रहे हैं। राजाओं की स्थिति क्या होती है, किसी के अधीन नहीं। राजा कभी भी किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करेगा। हम में से कईयों में ये संस्कार है, और अगर हम मालिक बन जाएं स्वयं के तो सारी अधीनताएं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। देखो जिस जिसकी ये समस्या है, बहने, मेरा पति मुझे ज्ञान में चलने नहीं देता, अधीन रखता है, मेरी नहीं सुनता, कहता है जैसे मैं कहूं वैसे ही करना है, नहीं तो घर से निकल जाओ, ये समस्या खत्म हो जाएगी। स्वयं के राजा बनते ही सबके राजा बन जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस 4 दिन 2 बार करेंगे, सवेरे और शाम, भूलना नहीं है। कभी भी कर लें, टाइम का कोई बंधन नहीं, 5 बजे 6 बजे 7 बजे मुरली सुनने जाओ, 7 बजे कर लो, कोने 7, शाम को 6, 5, 7 कभी भी। इसमें ये नहीं भाई हमारा तो मिस हो गया, दूसरा टाइम है। 2 बार स्वीकार है सबको, स्वीकार, बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल मन रुकने लगेगा। मन को रोकने के लिए ज्यादा लंबी चौड़ी बातें न करके 5 स्वरूपों का अभ्यास सबको बढ़ाना है, और जिनको इसमें बहुत अच्छी अनुभूति करनी है, क्लास में कई बहुत अच्छे पुरुषार्थी भी हैं ही, हर घंटे में 1 बार कर लेना, सवेरे जब खाली हैं, जब जब खाली हो, 5 मिनट के लिए 5 स्वरूप, 1 मिनट 1, और जब व्यस्तता है, दिन में सेवाओं में है, तो 1 मिनट में 5 स्वरूप। तो देखो कैसे करेंगे। बाबा की मुरलियां चली हैं इस पर, कई मुरलियां चली हैं। पहला स्वरूप हमारा कौन सा, अनादि आत्मा। इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसकी प्रैक्टिस के भिन्न भिन्न तरीके हैं। अपने आत्मिक स्वरूप को अपने सामने देखो, चमकती हुई ज्योति, धकुटी में नहीं, सामने बहुत तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा से फैल रही हैं, मैं आत्मा ये सामने ऐसी हूं मैं। फिर देखना अपने को भ्रकुटी के बीच, पर ऐसी हूं मैं। अपने को कुछ अपनी क्वालिटी याद दिला देना, और मैं उसमें से पहली क्वालिटी आत्मा की आपको याद दिलाऊंगा, कौन सी, मैं बहुत सुखी हूं। इन शब्दों का प्रयोग करना। मैं सुख स्वरूप हूं ये कहने से कुछ मजा नहीं आ रहा है, मैं बहुत सुखी हूं। ले जाओ अंदर इसको, ये नहीं अंदर से आवाज आए दुखी हूं, ये नहीं। दुखी है वो हो गया बीच में गड़बड़, छोड़ो उसे। मैं आत्मा बहुत सुखी हूं। आत्मा तो सुखी है ना, ठीक है, किसी ने आपको तंग किया, दुखी रहे, उसे भूलो। मैं आत्मा, मैं रिपीट कर रहा हूं सोच समझ के, करेंगी माताएं। फिर दूसरा संकल्प कर देना, बाबा आपने मुझे बहुत सुख दिया, मैं बहुत सुखी हूं। इस एक संकल्प को लो अपने अंदर, अंदर जाने देना, तीन बार पांच बार करना, मैं परम पवित्र हूं। पवित्रता तो मेरी नेचर है, बाबा आपने आकर मुझे पवित्र बना दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं, शक्तिपुंज हूं मैं, शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। बाबा से बात करो, बाबा आपने आकर मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, अपने जैसा मुझे बना दिया है, बारंबार आपको शुक्रिया। तीन चीजें करना, पसंद है? ये हूं मैं आत्मा, सामने देखो अपने को, ऐसी तेजस्वी हूं मैं आत्मा। छोटा सा उदाहरण ले लें, बल्ब 0 वाट का भी है, 15, 25, 40, 60, 100, हम ऐसे बल्ब हैं जो हजारों लाखों वाट के हैं। सोचो लाखों वाट का बल्ब जल रहा हो, दूर दूर तक लाइट फैलेगी। वो बल्ब थोड़ा मोटा है, आत्मा बल्ब बिल्कुल सूक्ष्म है और उसकी लाइट बहुत ज्यादा है। दूसरा स्वरूप कौन सा? आदि स्वरूप, देव स्वरूप, उसको भी अपने सामने ले आओ। सतयुग में पहला जन्म ऐसा था मेरा, ये सामने खड़ा है, क्लियर देखो, विजन क्लियर होनी चाहिए, डिवाइन चेहरा, तेजस्वी चेहरा, जैसे अंग अंग से गोल्डन किरणें फैल रही हैं, संपूर्ण पवित्र, सर्वगुण संपन्न, डबल अहिंसक, विश्व महाराजन, सामने देखो, ये मैं हूं। ऐसे अनेक जन्म मैंने लिए, ये मैं हूं। क्या होगा फायदा? जो कुछ उसमें है वो हम में आने लगेगा, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। ये फीलिंग अपने को देनी है, ये मेरा स्वरूप है, ये मैं हूं। संपूर्ण प्योरिटी आएगी, प्योरिटी नेचर होती जाएगी, गुणों को धारण करना सरल होता जाएगा। तीसरा स्वरूप बोलो भाई लोग, बोलो, पूज्य स्वरूप। कौन सा है बताओ? अपने अपने पूज्य स्वरूप भाइयों का, गणेश है और हनुमान है और विष्णु स्वरूप है, चतुर्भुज। बहनों का कौन सा है? अष्टभुजाधारी दुर्गा देवी और काली देवी, काली भी महादेवी है। और ये भाइयों ने बोल दिया, माता ही नहीं बोल रही। और बहुत सारी देवियां है ना, संतोषी माता भी है, दुर्गा अम्बा है। अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम हैं, चामुंडे है, महाराष्ट्र में अलग अलग नाम है बहुत सारे। हम तो जाते हैं ना जहां तहां, तो हर जगह की देवी अलग, आनंदी माँ भी, हर जगह की देवी अलग है। क्या रहस्य है उसका? कि वहां जिस बहन ने सेवा की उस एरिया में, उसकी स्थिति का वो स्वरूप है। किसी को 4 भुजाएं, किसी को 6, किसी को 8, किसी को 16, जैसी जैसी शक्तियां किसने धारण की। तो अपने पूज्य स्वरूप को सामने देखो, अब सामने देखकर अभ्यास करेंगे। जो आप चुने, एक चुन लेना चाहिए, सब चुनेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। बहनें भी हनुमान हो सकती हैं, भाई भी दुर्गा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो शक्तियों की बात है ना, इसमें भाई बहन की बात नहीं, बॉडी की बात नहीं है, जो इनर पावर्स है हमारी, शक्तियां हैं उनकी बात है, जिसमें जैसी शक्तियां, अब जो संतुष्ट आत्माएं बन गई, वो भाई हो या बहने हो, वो संतोषी माँ हो गई, उसको सामने लाओ। और कभी कभी अपने को उस स्वरूप में देखो, मैं वो हूं, मंदिर में हूं, मूर्ति की जगह, सामने हजारों भक्त खड़े जय जयकार कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, वो जरा महिमा सुने अपनी, ये देवी तुम असुर संहारिणी हो, विद्यादायिनी हो, भाग्य विधाता हो, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो, ममतामयी माँ हो, पालना करने वाली हो। किसकी महिमा? वो हमारी, वो मेरी महिमा है। तो बहुत सुंदर विचार होंगे, मैं जो भक्ति में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं, कहीं मेरी कन मनोकामनाएं तो अधूरी नहीं रह गई, क्या हाल है मेरा? भक्त सामने खड़े हैं, माँ माँ और देना है हमें, कहीं हम लेने में तो नहीं लगे हुए अभी तक भी? ये गुड फीलिंग आएगी अपने को, कितने महान हैं बाबा, व्यक्त बाबा सिखाया करते थे ये बात, मंदिरों में जाओ अपनी महिमा सुन के आओ, भक्त जानते हैं हमारी देवी कितनी महान है, और देवी भूल गई है कि मैं महान हूँ, जाओ सुन के आओ और पहचानो हम कौन हैं। वो सब महिमा जो शास्त्रों में लिख दी गई है देवियों की, देवताओं की, वो सब संगम युग पर जिन आत्माओं ने वो महान कार्य किए हैं उन सब की है। अब ऐसा एक खेल चलेगा इस सृष्टि पर, देखो साकार पार्ट पूरा हुआ, अव्यक्त पार्ट भी पूरा होने वाला है, अब तीसरा पार्ट आएगा, कौन सा? जय जयकार का, साक्षात्कार का, जैसे बाबा हमें मिले वैसे ही हम मिलेंगे अपने भक्तों को, हरि भक्त को उसकी इस देवी, उसके इस देव मिल जाएंगे, जो हनुमान से प्यार करते हैं उनको हनुमान मिलेंगे, जो दुर्गा देवी के भक्त हैं उनको देवी मिलेगी, जो विष्णु के भक्त हैं उनको विष्णु मिलेंगे, और ये बहुत सुंदर खेल इस सृष्टि पर चलने वाला है, उसकी यादगार में पुराण लिखे जाएंगे, भागवत लिखी जाएगी, ये सब सत्य घटनाएं यहाँ होंगी, और द्वापर युग में ऋषि लोगों को जब वो फील होगा, वो सीन देखेंगे, वो टचिंग होंगी, तो वो उसको लिखेंगे, उनको पुराण कहा जाएगा। लोग सोचते हैं पुराणों में बड़ी गड़बड़ लिख दी, पता नहीं क्या क्या लिख दिया, उनमें गड़बड़ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घटनाएं यहाँ घटी हैं वो लिखी गई हैं। तो ये हमारा पूज्य स्वरूप, चौथा हमारा ब्राह्मण स्वरूप। अब आप सोचेंगे ब्राह्मण तो हम हैं, इसको क्या देखें अपने सामने? मैं ऐसा ब्राह्मण याद दिलाएं अपने को, जिसकी पालना स्वयं भगवान करते हैं। मैं ऐसी भाग्यवान ब्राह्मण आत्मा, जिसके भाग्य का निर्माण स्वयं भाग्य विधाता कर रहे हैं। मैं ऐसी भाग्यवान आत्मा, जिसको सत्य ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान टीचर बनकर आ गए हैं। सोचने की बात है, कभी मनुष्यों ने मनुष्यों को पढ़ाया, और अब भगवान पढ़ा रहे हैं, लेकिन किन्हें? इष्ट देव देवियों को। सोचो, सब इष्ट देव देवियां अपने मंदिर छोड़ के यहाँ आकर बैठ गए, और पढ़ाने आया स्वयं भगवान, उन्हें और कोई पढ़ा भी कैसे सकता है? ठीक है ना? ब्राह्मण महान भाग्यवान, अपने स्वमानों को याद कर लो, क्या हैं हम, क्या सोचा था इस जीवन में, क्या हो गया? ठीक है बात या नहीं? जो सोचा नहीं था, जिसकी कल्पनाएं नहीं थी, वो सब मिल गया, जो इन आंखों ने कभी नहीं देखा था चारों युगों में वो आकर देख लिया, भगवान को इस धरा पर पार्ट बजाते हुए देखा, उन्हें सृष्टि का निर्माण कैसे करता है इन आंखों से देखा। देखा ही नहीं, हम भी साथ लग लिए। घर में कोई बड़ा काम हो रहा हो, साथ ही आ जाते हैं ना सब परिवार वाले। हम उसके परिवार हैं, भगवान के परिवार। सोच के देखो, किसी किसी को नशा रहता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, और हम कौन हैं? भगवान की वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भगवान का परिवार हो गए हम। कितने नशे की बात है, ये याद दिलाएंगे अपने को। और पांचवा हमारा स्वरूप है फरिश्ता, अर्थात अब इसको भी अपने सामने चित्रित करना है, विजन बनाएंगे अपने सामने। देखो सामने ऊपर को प्रकाश का मेरा शरीर, मस्तक में चमकती हुई मैं तेजस्वी आत्मा, अंग अंग से लाइट फैल रही है, मैं धरती से ऊपर हूँ। डबल लाइट, पवित्रता का फरिश्ता, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, बरसात हो रही है मेरे ऊपर ईश्वरीय वाइब्रेशंस की, ये मेरा स्वरूप है। फिर वो जैसे मेरी ओर आकर मुझ में समा गया, अब मैं हूँ फरिश्ता, अंग अंग से लाइट फैल रही है, ये है मेरा वो स्वरूप जो मुझे प्राप्त करना है। ये हमारे पांचों स्वरूप हैं। फिर छठा भी जोड़ दें, अब यहाँ से मैं निकल कर आत्मा गई परम धाम में बाबा के पास। पांचवा स्वरूप बाबा, पांच हमारे, छठा बाबा, छह स्वरूप पर हमें बुद्धि स्थिर करनी है। तो कल से सभी आज सोने से ही पहले करेंगे, सोने से पहले पांच मिनट लेटे लेटे भी ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। अपनी बेड में लेटे तो फील करना, मैं दुर्गा देवी लेती हूँ, मैं हनुमान लेता हूँ, पूंछ को हटा देना बस। पूंछ का तो पता ही है सबको, कौन सी जो जला दी है, वहां तो दिखाया पूंछ ने लंका जला दी, पर वास्तव में पूंछ जली, हनुमान की तो दिखाई पूंछ नहीं जली, लेकिन यहाँ तो हनुमानों की पूंछ जली, और जिसने पूंछ जितनी जल्दी जलाई वो उतना ही बड़ा महावीर। कौन सी है वो पूंछ? देवान की पूंछ, मैं मेरे की पूंछ, ईगो की पूंछ, इसको बाबा ने पूंछ कहा। ये बाबा ने कई बार मुरलियां चलाई हैं पहले कि ये पूंछ है तुम्हारी, ये लटकी रहती है सदा, ये लटकनी नहीं चाहिए, अब इसको हटा दो। तो इन पांच स्वरूपों के अभ्यास से मन भी शांत और एकाग्र होगा और अनुभूति बहुत सुंदर रहेगी। कर लेंगे ना सब? जो नए आए हैं उनसे फिर पूछ रहा हूँ, जो अभी आए हैं, कल पांच स्वरूपों का अभ्यास हर घंटे में एक बार करना है सबको, चार दिन बाबा के आने तक। और मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देना चाहता हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, और आप सभी इसको आराम से ग्रहण कर लेंगे। मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ। हमारे पास मन से भी सुपीरियर सुंदर चीज है बुद्धि। बुद्धि मन को कंट्रोल भी करती है। बुद्धि जैसे राजा हो गई, मुख्यमंत्री, और मन मंत्री। मन को बुद्धि के अधीन काम करना है। हमें अपनी बुद्धि को किससे भरपूर करना है? पहला ज्ञान अमृत से, उसके बाद बहुत चीजें हैं, वरदानों से भरपूर करना है, शक्तियों से भरपूर करना है और जो हमारे सारे सद्गुण हैं उनको भी बुद्धि में धारण करना है। बुद्धि हमारी धारणा शक्ति है, इसमें ही हम सब कुछ धारण करते हैं। ये सुंदर पात्र है हमारा, जैसे घरों में पात्र होते हैं ना बर्तन, उनमें ही हम चीजें रखते हैं। बुद्धि हमारी सुंदर पात्र है, इसमें ही हम बाबा को भी बैठाते हैं। तो ज्ञान को इसमें धारण करना कब होगा? क्या बाबा कहते हैं रोज? ज्ञान किसकी बुद्धि में धारण होगा? जिसका ये बर्तन सोने का हो। दूसरी बात सरल बोल देते हैं बाबा, जो पवित्र बुद्धि हो। पवित्र बुद्धि में ही ये पवित्र ज्ञान अमृत बसता है, अन्यथा ये निकल जाता है, बाहर फेंक देती है हमारी बुद्धि इस ज्ञान अमृत को। क्योंकि बुद्धि में क्या भर दिया? बोलो, बोल रहे धीरे से, किचरा भर दिया, डस्टबिन बना दिया। अब ये बुद्धि डस्टबिन के लिए तो नहीं है ना। आपके पास कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें आप रोज दूध रखते हो और बच्चे उसमें किचरा डालने लगे। अपने को समझाना है सभी को, ये अपने से बातें करनी है कि ये मेरी बुद्धि एक योगी आत्मा की बुद्धि है, ये बुद्धि एक महान आत्मा की बुद्धि है। हे मेरी बुद्धि, तुम केवल ईश्वरीय ज्ञान धारण करने के लिए हो, तुम्हें अब ईश्वरीय वरदान धारण करने हैं। अपनी बुद्धि को ही आदेश दे दे, हे मेरी बुद्धि, जो भी गंदगी है उसको बाहर निकाल दे। हे मेरी बुद्धि, अब तू कोई भी परचिंतन, परदर्शन, वैर भाव, तेरा मेरा, इसको स्वीकार न कर। ये सब चीजें धारण करने के लिए तुम नहीं हो, अपनी बुद्धि से बात करेंगे तो जब भी कोई ऐसी गंदगी आएगी, बुद्धि उसको रिजेक्ट कर देगी, बाहर फेंक देगी। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। तो ये हरेक के अपने हाथ में है, अपनी बुद्धि को कैसा बनाए, एक विजन बनाए पूरे कल्प के लिए। सभी जो बहुत बुद्धिमान बैठे हैं वो ध्यान से सुन लें, हर जन्म में मेरी बुद्धि ऐसी रहे। कैसी रहे वो खुद सोच लें। देखो, स्टूडेंट लाइफ से सब गुजरे हैं, जो बहुत होशियार स्टूडेंट रहते हैं उनके जीवन की रौनक, और जो कम बुद्धिमान होते हैं उनके जीवन की निराशा अलग अलग होती है। कई बच्चों के फोन आते हैं, माताएं कराती हैं, हमारी लड़की बहुत होशियार, 12वीं में आई, पता नहीं क्या हो गया, बहुत पढ़ती है लेकिन कुछ याद नहीं होता। रोज आ जाता है एक दो का ऐसा मैसेज, क्या करें। तो कितनी अच्छी बात है कि पूरा कल्प हमारी बुद्धि बहुत सुंदर रहे, सब कुछ आराम से ग्रहण करे, हमारी बुद्धि हमारे लिए सुखदायी हो जाए, हमारी बुद्धि में हमारे लिए ही देवत्व भरा हुआ हो, हम इस बुद्धि को श्रेष्ठ ज्ञान से भरें, वरदानों से भरें, शक्तियों से भरें, संतुष्टता अपना लें। मैं और मेरापन बुद्धि में गंदगी लाता है, क्रोध बुद्धि को कमजोर करता है। हमें यदि इसको सॉलिड पात्र बना के रखना है, मजबूत पात्र। ऐसे पात्र भी तो होते हैं ना, ऊपर से भारी चीज डाल दी टूट गया। तो हमें बुद्धि को ऐसा स्ट्रांग पात्र बनाना है जो शक्तिशाली प्योरिटी को धारण करे, जो सर्व शक्तियों को अपने में संभाले। उसके लिए हमें इस बुद्धि में ज्ञान को समाना है, इसलिए गंदगी का इसमें कोई स्थान न हो, नहीं तो ज्ञान बाहर निकल जाएगा। एक ही चीज रहेगी, गंदगी या अमृत, कौन सा पसंद है? अमृत पसंद है सभी को। माताओं को पसंद है अमृत? सब छोड़ दें बाकी बातें, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये जानने की बजाय हमें क्या करना है, इस पर फोकस करें। बहुत औकात होती है, मधुबन में आए हैं तो सबको जानने की कौन क्या कर रहा है, अच्छे काम नहीं। दूसरे तो वो लेके जाते हैं सब, उससे उनमें गिरावट आ जाती है, खुशी नष्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरों के अवगुण धारण करता है, धारण करना माना सुन लिया, उनको सीख लिया, स्वीकार कर लिया, हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, देखा यहाँ भी ऐसे लोग हैं, खुशी नष्ट। साथ साथ सजा मिल जाती है, खुशी नष्ट। खुशी जो हमारा बहुत बड़ा खजाना है, उसको हम इन चीजों से नष्ट न करें। जानकी दादी की बात याद दिला दूं, जो हमने सीखी थी बचपन में, गलती दूसरों की, और वो कहती थी मुसीबत हमारी। मुसीबत हो गई ना, गलती कोई कर रहा है, परेशान हम हो रहे हैं, खुशी हम गंवा रहे हैं। क्यों? उसकी खुशी जाए ना, वो खुश है गलती करके भी, और हम देखने वाले परेशान हो रहे हैं। मुक्त हो जाए इन संकल्पों से तो कल सभी आनंद लेंगे ना, चार दिन कल से, आज रात से ही। और पूर्ण विश्वास है कि सभी का बाबा का मिलन बहुत बहुत आनंदकारी होगा। चाहे अब नीचे जाएं, किसी को यहाँ भी रहना पड़ता है, मधुबन वालों को वहाँ भीड़ हो जाती है, यहाँ रह के भी बहुत ज्यादा आनंद आएगा। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।